एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब और उसके कमाल के लेखक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं।
हाँ, एक ऐसे लेखक जिन्होंने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया बदली बल्कि उसे देखने और समझने का हमारा नजरिया भी, है ना?
बिल्कुल। आज बात हो रही है महान रिचर्ड फाइनमैन की और उनकी क्लासिक किताब द कैरेक्टर ऑफ फिजिकल लॉ की, मतलब भौतिक नियमों का चरित्र।
और देखिए, ये किताब वो नहीं है जो आपको स्कूल या कॉलेज में मिलती है। ये सिर्फ नियम या फॉर्मूले नहीं गिनाती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उन नियमों की स्वभाव में झांकने का एक न्योता है। उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, उनकी सुंदरता, कभी कभी उनका अजीब होना।
और सबसे मजेदार बात, उन्हें खोजने की जो इंसानी कोशिश है वो पूरी प्रक्रिया।
हाँ, वो शक, वो अंदाजे, वो प्रयोग।
हाँ, वही इसका असली सार है और इसीलिए ये आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। ये हमें सिखाती है कि विज्ञान असल में एक सोचने का तरीका है।
सही कहा। शक करना, अनुमान लगाना और फिर उसे सच्चाई की कसौटी पर कसना, ये एक तरीका है बस।
तो चलिए पहले उस शख्स से मिलते हैं जिनके विचारों पर हम आज बात कर रहे हैं। रिचर्ड फाइनमैन, 1918 से 1988 तक। कौन थे ये?
वो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली सैद्धांतिक भौतिक विदों में से एक थे। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे QED कहते हैं, उस पर काम के लिए उन्हें 1965 में नोबेल पुरस्कार भी मिला।
नोबेल तो मिला, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता था, महान व्याख्याकार।
हाँ, क्यों? क्योंकि उनमें वो कमाल का कॉम्बिनेशन था, एक तरफ गहरी वैज्ञानिक समझ और दूसरी तरफ एक बच्चे जैसी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा। वो किसी भी मुश्किल चीज को ना बड़े मजेदार तरीके से समझा सकते थे।
बिल्कुल, एकदम सरल भाषा में। उनकी एक मशहूर बात भी है कि अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते,
तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद भी ठीक से नहीं समझे। क्या बात है।
सही। और ये किताब द कैरेक्टर ऑफ फिजिकल लॉ, ये असल में कॉर्नर यूनिवर्सिटी में 1964 में दिए गए उनके 7 लेक्चर्स का कलेक्शन है और ये लेक्चर्स आम लोगों के लिए थे।
अच्छा, इसीलिए ये इतने रिलेटेबल हैं। वो सिर्फ नियमों के बारे में बता नहीं रहे थे, वो उस पूरी खोज की प्रक्रिया को जी रहे थे।
हाँ, उनका नजरिया इसीलिए खास था। वो थ्योरी की ऊंचाइयों पर भी थे और जमीनी हकीकत से भी जुड़े थे। गणित की गहराई में उतरते हुए भी प्रकृति की छोटी छोटी बातों पर हैरान हो जाते थे।
तो अच्छा, ये किताब फिर है किस बारे में? जैसा हमने कहा, ये कोई रेगुलर फिजिक्स की किताब तो है नहीं।
नहीं, इसका असली मकसद है साइंस की फिलॉसफी, उसके काम करने का तरीका, वो दिखाना। फाइनमैन हमें बताते हैं कि ये जो फिजिकल लॉज हैं, ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है।
उनका एक अपना चरित्र है, उनमें सरलता है, वो यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह लागू होते हैं। उनमें खास तरह की सिमेट्री यानी समरूपता है।
और हाँ, क्वांटम लेवल पर तो उनमें अनिश्चितता भी है। अजीब है ना?
बिल्कुल। तो ये किताब एक तरह की वैचारिक यात्रा है। फाइनमैन हमें ठोस उदाहरणों से शुरू कराते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम।
हाँ, और फिर धीरे धीरे वो हमें और गहरे और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ ले जाते हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन या सिमेट्री। और वो बताते हैं कि ये नियम खोजे कैसे जाते हैं।
ये कोई सीधी सड़क नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। पहले आप एक अंदाजा लगाते हैं, एक पढ़ा लिखा अंदाजा,
एजुकेटेड गेस जिसे कहते हैं।
हाँ, फिर गणित का इस्तेमाल करके उसके नतीजे निकालते हैं।
और फिर
सबसे जरूरी हिस्सा, प्रयोगों से उसकी बेरहमी से जांच, क्या वो नेचर से मैच करता है या नहीं।
बिल्कुल। और किताब का जो दिल है वो शायद इस बात में है कि इन नियमों में एक अंदरूनी गणितीय सुंदरता है, एक हार्मनी है। इन नियमों को समझना मतलब प्रकृति की गहरी बनावट को समझना। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि नियम क्या है, बल्कि ये है कि नियमों का मिजाज कैसा है, हम इन्हें ढूंढते कैसे हैं और इस खोज के फ्रंटियर पर होना कैसा लगता है।
चलिए अब किताब की कुछ अहम पड़ावों से गुजरते हैं, देखते हैं हर चैप्टर हमें क्या सिखाता है। पहला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का नियम, एक आदर्श उदाहरण।
हाँ, फाइनमैन न्यूटन के नियम से शुरू करते हैं क्योंकि वो कई मायनों में एक परफेक्ट फिजिकल लॉ जैसा लगता है।
सही। उसकी खासियतें देखिए, वो मैथमेटिकल है, एक सरल सा समीकरण है, F=gm1m2r².
यूनिवर्सल है, गिरते सेब से लेके ग्रहों की चाल तक सब पर लागू और भविष्यवाणी कर सकता है।
हाँ, लेकिन फाइनमैन ये भी दिखाते हैं कि ये विज्ञान की प्रगति का एक क्लासिक उदाहरण है। पहले ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन, जैसे टाइको ब्राहे ने किया,
फिर उसमें पैटर्न ढूंढना जैसे केपलर ने किया,
और फिर एक गहरी थ्योरी बनाना जैसे न्यूटन ने किया।
लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि कोई भी नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर नहीं होता, ये हमारे सबसे अच्छे अनुमान होते हैं।
हाँ, जिन्हें बेहतर समझ आने पर बदला जा सकता है, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ने न्यूटन के लॉ को और बेहतर बनाया, उसे रिफाइन किया।
और वो एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात कि दो चीजें बिना छुए एक दूसरे को कैसे खींच लेती हैं, ये आज भी सोचने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल। अब दूसरे अध्याय में फाइनमैन गणित और भौतिकी के रिश्ते की बात करते हैं। ये वाकई एक मिस्ट्री है।
हाँ, कि गणित जो इंसानी दिमाग की उपज लगती है, वो नेचर को इतनी परफेक्टली कैसे डिस्क्राइब कर लेती है।
फाइनमैन कहते हैं कि गणित सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये प्रकृति की संरचना को ही व्यक्त करती है। जैसे संगीत के नोट्स, वो सिर्फ संगीत का वर्णन नहीं करते, वो खुद ही संगीत की संरचना है।
अच्छा,
मतलब गणित हमें सिर्फ समझने में ही नहीं बल्कि नए नतीजे निकालने और भविष्यवाणियां करने में भी मदद करता है।
हाँ, जिन्हें हम फिर प्रयोगों से टेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन वो ये चेतावनी भी देते हैं कि गणितीय विवरण और असलियत, इनमें फर्क होता है, नक्शा इलाका नहीं होता है ना।
सही बात है। अच्छा, अध्याय 3 हमें कुछ और गहरे सिद्धांतों पर ले जाता है, महान संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉज।
हाँ, ये नेचर के हिसाब किताब के नियम हैं, जैसे ऊर्जा का संरक्षण, मोमेंटम का संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज।
मतलब ये कि कुछ चीजें हैं जो किसी बंद सिस्टम में हमेशा उतनी ही रहती हैं।
हाँ,
चाहे अंदर कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए।
बिल्कुल।
एनर्जी न तो बन सकती है न खत्म हो सकती है, बस रूप बदल सकती है। और ये नियम किसी और नियम से निकले नहीं है, ये अपने आप में फंडामेंटल हैं।
और इन पर वैज्ञानिकों का विश्वास इतना गहरा था कि जब कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी कम होती दिखी, तो उन्होंने नियम को गलत नहीं माना,
बल्कि एक अनदेखे पार्टिकल न्यूट्रिनो की भविष्यवाणी कर डाली, और वो बाद में सच साबित हुआ। ये दिखाता है कि ये सिद्धांत कितने पावरफुल है।
वाह।
अच्छा, अध्याय 4 और भी सुंदर और गहरे विचार पर है, भौतिक नियम में समरूपता यानी सिमेट्री।
हाँ, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक सेंट्रल पिलर है। फाइनमैन बिना मुश्किल गणित के समझाते हैं कि सिमेट्री और कंजर्वेशन लॉज के बीच एक गहरा कनेक्शन है।
सिमेट्री मतलब?
मतलब ये कि अगर आप चीजों को कुछ खास तरीकों से बदलें, जैसे जगह बदल दें या समय बदल दें या घुमा दें, तो भी फिजिक्स के नियम नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं।
अच्छा,
जैसे?
जैसे
अगर फिजिक्स के नियम यहाँ और चांद पर एक जैसे हैं, मतलब स्पेस में सिमेट्री है, तो इसका नतीजा है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है।
ओह।
और अगर नियम आज और कल एक जैसे हैं, मतलब टाइम में सिमेट्री है,
तो एनर्जी कंजर्व्ड रहती है।
ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, सिमेट्री असल में नियमों की बनावट तय करती है।
और फिर वो उस चौंकाने वाली खोज का भी जिक्र करते हैं जब पता चला कि नेचर हमेशा पूरी तरह सिमेट्रिक नहीं है।
वो लेफ्ट राइट वाला मामला।
हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स बाएं और दाएं में फर्क करता है, प्रकृति भी कभी कभी अपनी पसंद बताती है। कमाल है। अच्छा, अध्याय 5 एक और बड़े सवाल से जूझता है, अतीत और भविष्य का भेद, समय का तीर, एरो ऑफ टाइम।
हाँ, ये अजीब बात है, फिजिक्स के ज्यादातर फंडामेंटल लॉज टाइम रिवर्सिबल हैं। मतलब आप किसी घटना का वीडियो उल्टा चलाएं तो वो भी नियमों के हिसाब से पॉसिबल लगेगा।
लेकिन हमारी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। अंडा टूटता है जुड़ता नहीं, धुआं फैलता है सिमटता नहीं, समय एक ही तरफ जाता है।
फाइनमैन समझाते हैं कि ये जो वन वे ट्रैफिक है टाइम का, ये शायद बुनियादी नियमों का गुण नहीं है, ये जुड़ा है थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम और एंट्रोपी से।
एंट्रोपी यानी अव्यवस्था का माप।
हाँ, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यूनिवर्स ज्यादा व्यवस्थित से ज्यादा अव्यवस्थित होता जा रहा है, तो समय का तीर शायद बहुत सारी चीजों के कलेक्टिव बिहेवियर से निकलता है, किसी एक कण के नियम से नहीं।
ये तो सोचने वाली बात है। और फिर आता है अध्याय 6, संभाव्यता और अनिश्चितता, क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ फाइनमैन हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जो बिल्कुल अजीब है।
हाँ, वो खुद कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स कॉमन सेंस के नजरिए से बेतुकी है, वो इसे आसान बनाने की कोशिश नहीं करते हैं बल्कि हमें दिखाते हैं कि दुनिया असल में कितनी स्ट्रेंज है।
वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का उदाहरण लेते हैं, है ना?
हाँ, ये दिखाने के लिए कि क्वांटम दुनिया कैसे काम करती है, कण कभी तरंग की तरह बिहेव करते हैं, कभी कण की तरह, इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं।
और हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि कोई कण कहाँ जाएगा, सिर्फ उसकी संभावना बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी।
बिल्कुल। और वो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल कि हम एक ही समय में किसी कण की पोजीशन और मोमेंटम जैसी कुछ चीजें पूरी सटीकता से जान ही नहीं सकते, ये हमारी लिमिटेशन नहीं, ये नेचर का नियम है।
फाइनमैन का मैसेज साफ है, हमें हकीकत को वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा जैसी वो एक्सपेरिमेंट्स में दिखती है, चाहे वो हमारे इंट्यूशन को कितनी भी अजीब क्यों ना लगे।
ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की चुरांत परीक्षा है।
और आखिरी अध्याय है, चैप्टर 7 है नए नियमों की खोज पर। यहाँ फाइनमैन हमें वापस साइंटिफिक प्रोसेस के दिल में ले जाते हैं।
हाँ, विज्ञान क्या है? ये एजुकेटेड गेस करने, इमेजिन करने और फिर नेचर से सवाल पूछने, यानी एक्सपेरिमेंट करने का एक न खत्म होने वाला सिलसिला है।
और ये अंदाजे हवा में नहीं लगाए जाते, ये पिछले अध्यायों में बताए गए सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, मैथमेटिकल ब्यूटी, सिमेट्री, कंजर्वेशन लॉज
और सबसे बढ़कर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर।
वो विज्ञान की सीमाओं और कभी कभी फंस जाने की भावना पर भी बात करते हैं जब पुराने सिद्धांत कम पड़ने लगते हैं।
हाँ, लेकिन अंत में जो मैसेज है वो उम्मीद और रोमांच का है, अज्ञात को जानने की खुशी। वो कहते हैं ना, द प्लेजर ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट, और ये समझना कि हमेशा कुछ नया सीखने को बाकी रहता है।
तो इस पूरी यात्रा से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहली बात तो मेरे लिए ये है कि साइंटिफिक मेथड कोई सूखी बोरिंग प्रक्रिया नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कल्पना, शक, क्रिएटिविटी और फिर कठोर जांच का एक मिलाजुला नाच है। यहाँ डाउट करना कमजोरी नहीं, प्रोग्रेस का इंजन है।
दूसरी अहम बात है मैथमेटिकल ब्यूटी और सिमेट्री जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की ताकत। ये सिर्फ अच्छे नहीं लगते, ये हमें हकीकत की गहरी बनावट की तरफ इशारा करते हैं।
बिल्कुल, जैसे कभी कभी भारत की अलग अलग कल्चर्स में ऊपर से भिन्नता दिखती है पर अंदर कोई गहरा धागा सबको जोड़ता है ना, वैसे ही नेचर के नियमों में भी है।
हाँ, विविधता के नीचे एकता। और तीसरा सबक जो शायद सबसे मुश्किल है, वास्तविकता को स्वीकारना, चाहे वो कितनी भी अजीब लगे, क्वांटम मैकेनिक्स।
सही, हमें अपनी कॉमन सेंस को चैलेंज करने के लिए तैयार रहना होगा।
और चौथा, हमारा ज्ञान हमेशा अधूरा है, प्रोविजनल है। आज का सच कल का आधा सच हो सकता है, ये हमें विनम्र बनाता है।
हाँ, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रखता है। अच्छा, फाइनमैन के कुछ कोट्स तो वाकई यादगार हैं।
हाँ, उनके कुछ कथन जो इन थीम्स को पकड़ते हैं।
क्या बात है?
पहला और शायद सबसे जरूरी, पहला सिद्धांत ये है कि आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, और आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे मूर्ख बनाना सबसे आसान है।
क्या बात है, सीधी चोट है ये। मतलब अपने आइडियाज की सबसे कड़ी जांच खुद करो, सबूतों के प्रति ईमानदार रहो,
खासकर तब जब वो आपकी पसंदीदा थ्योरी के खिलाफ जा रहे हों। ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी उतना ही सच है।
बिल्कुल। दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अनुमान कितना सुंदर है, अगर ये प्रयोग से असहमत है तो ये गलत है।
एकदम खरा, सिद्धांत कितना भी एलिगेंट क्यों ना हो, आखिरी फैसला एक्सपेरिमेंट का ही होगा, नो कॉम्प्रोमाइज।
तीसरा, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी क्वांटम यांत्रिकी को नहीं समझता है।
ये सुनना एक नोबेल लॉरिएट से अजीब लगता है, पर ये उनकी ईमानदारी दिखाता है। मतलब ये नहीं कि हम इसे यूज नहीं कर सकते।
नहीं, यूज तो करते हैं और ये बहुत सफल है, लेकिन ये क्यों ऐसा है ये समझना मुश्किल है। ये हमें रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी और अपनी समझ की लिमिट्स याद दिलाता है।
और चौथा, समान समीकरणों के समान समाधान होते हैं। ये सुनने में तकनीकी लगे पर मतलब गहरा है।
हाँ, ये दिखाता है कि नेचर में एक बेसिक यूनिटी है। अगर एक ही गणितीय नियम अलग अलग दिखने वाली चीजों पर लागू होता है, जैसे गिरता सेब और घूमता चांद, तो मतलब उनके पीछे कोई गहरा कॉमन प्रिंसिपल काम कर रहा है।
अब सवाल ये कि फाइनमैन के ये विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। मुझे लगता है उनका अनुमान लगाओ, गणना करो, तुलना करो वाला मॉडल।
हाँ, गेस, कंप्यूट, कंपेयर, ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बेहतरीन टूल है, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ।
बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि अनिश्चितता में कैसे डिसीजन लें, हमें अक्सर पूरी जानकारी नहीं होती।
सही, फाइनमैन का तरीका है, अपने बेस्ट गेस पर एक्ट करो पर दिमाग खुला रखो, नई जानकारी मिले तो बदलने को तैयार रहो, ये फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है।
और ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को भी बढ़ावा देता है। मतलब चीजों को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो हमेशा से होती आई हैं।
बिल्कुल,
उनके मूल कारण समझो।
हाँ, इससे इनोवेशन आता है
और साथ ही ये हमें ज्यादा क्यूरियस और ईमानदार बनाता है। दुनिया को हैरानी से देखो, क्यों पूछो और खुद से सच बोलो।
जैसे मान लीजिए कोई अपनी कोई आदत बदलना चाहता है, अनुमान लगा सकता है कि एक नया तरीका काम करेगा,
फिर कुछ हफ्ते उसे करके देखो, ये हुआ कंप्यूट या एक्सपेरिमेंट,
और फिर तुलना करो कि क्या वाकई सुधार हुआ।
ये छोटा सा उदाहरण है कि ये सोच कहीं भी लग सकती है।
तो अंत में इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी टेक अवे क्या रही?
मेरे लिए शायद ये कि विज्ञान सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सवाल पूछने, शक करने, कल्पना करने और फिर ईमानदारी से जांचने की एक बहुत ही मानवीय प्रक्रिया है। और ये जानना कि हमारे सबसे पक्के सिद्धांत भी बस बेहतरीन अनुमान है, ये एक तरह की आज़ादी देता है।
और मुझे फाइनमैन का वो आग्रह बहुत पसंद आया कि वास्तविकता को स्वीकार करो, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। ये हमें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की चुनौती देता है। और उनकी वो चेतावनी, खुद को मूर्ख मत बनाओ, ये तो मंत्र है।
इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है जो हम शायद अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। अगर भौतिकी के नियम इतने सुंदर, इतने गणितीय हैं, तो ये हमारे दिमाग और इस ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहता है?
क्या हम ब्रह्मांड को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, हमारा लॉजिक किसी गहरे स्तर पर उसकी बनावट से मैच करता है, या ये महज एक इत्तेफाक है? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।